पृष्ठ संख्या 102। इसके अलावा कहीं कहीं इस एकांकी में राकेश के स्वभाव का अंग बन गई कुछ चीजें भी हैं, माधुरी कहती है, लेकिन फिर भी मुझे अपना घर अधूरा सा लगता है। तुम जैसी परफेक्शन चाहती हो, वैसी परफेक्शन दुनिया में कहीं मिलता है। मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन यह सब मुझे अधूरा अधूरा सा जरूर लगता है। पात्रों की, खासकर माधुरी की कचोट और तनाव यहाँ आधे अधूरे की सावित्री की कचोट का आरंभ है। राकेश के पात्रों की यह विशेषता है कि वे बहुत उलझन में पड़े दिखाई देते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ गहरा आत्मीय, लेकिन क्या चाहते हैं इसका उत्तर उनके पास नहीं है। इस छटपटाहट का मामूली सा संकेत भर इस एकांकी में मिलता है। बहुत बड़ा सवाल उपर्युक्त तीनों एकांकियों की तुलना में काफी आगे की रचना जैसा लगता है। अधिक सहज, स्वाभाविक और ज्यादा गहरी पैठ, बनावट और गठन में अनुभव का तीखापन। इस एकांकी का संबंध भिन्न मध्यवर्गीय बाबुओं की स्थिति से है। इस वर्ग के लोग किस तरह जड़, शिथिल, ढुलमुल स्थिति में जीते हैं, लेकिन बातों में समय व्यय करते हैं, न संघर्ष करना चाहते हैं, न सक्रिय होकर जूझना चाहते हैं, लेकिन इच्छा और आशा करते हैं कि उन्हें सारी सुविधाएं मिलें। इस सत्य को सामने लाते हैं शर्मा, मनोरमा, संतोष, गुरप्रीति, कपूर, मोहन आदि जो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं। वे आपस में मीटिंग करके सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि वह ऐसे कर्मचारियों के लिए सस्ते सस्ते मकान बनवाएं, लेकिन पहले मीटिंग के लिए लंबा इंतजार किया जाता है। समय बीतने के लिए गप्पे लड़ाई जाती हैं, या चाय और मूंगफली मंगाई जाती है, या सुर्ती फांकी जाती है। मीटिंग होती भी है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ बहस ही बहस। उस बहस से पहले उसके बीच में भद्दे और खोखले शब्दों के ऊपरी प्रयोग की हंसी उड़ाई जाती है। बहनों और भाइयों, यह एक झूठा स्टेटमेंट नहीं है जहाँ बातें कही जाती हैं, लेकिन सही बात को सही ढंग से कहने के लिए सही शब्द नहीं मिलते। हिंदी को तोड़ा मरोड़ा जाता है, हास्यास्पद बनाया जाता है। बहस के बीच एक दूसरे के चरित्र पर व्यंग भी कसे जाते हैं। कोई प्रस्ताव पास नहीं होता, न गंभीर मानसिकता, न गंभीर विचार और न गंभीर माहौल। इस तरह की मीटिंग्स की निरर्थकता का बोध भी सबको है। मीटिंग बकवास में, झगड़े में बदल जाती है, वॉकआउट होता है और सारा समय व्यर्थ नष्ट करके मीटिंग समाप्त हो जाती है। इस निरर्थकता और समय की बर्बादी का एहसास बड़ी अच्छी तरह राम भरोसे और श्याम भरोसे चपरासी से कराया गया है। एकांकी के आरंभ में दोनों धूल झाड़ रहे हैं, मीटिंग के दौरान दोनों बाहर बैठे ऊंघ रहे हैं, अंत में राम भरोसे कहता भी है, तमाशा खत्म हुआ, यानी जो कुछ था अर्थहीन था, तमाशा था, क्योंकि बात जहाँ की तहाँ है, अपने घर में रहना, अपना काम करना। लेकिन आगे वह फिर कहता है, अब सीधा हो जा, बहुत कूड़ा कर गए हैं, साफ करना है। जाहिर है कि मध्य वर्ग की निष्क्रियता, जड़ता और हल्की मनः स्थिति के प्रति राकेश के मन में गहरा विक्षोभ और विद्रोह है। और साथ ही उस वर्ग की क्रियाशक्ति के प्रति अविश्वास भी। पृष्ठ संख्या 103। क्योंकि इस वर्ग ने इतनी गर्द और इतना कूड़ा फैलाया है जिसे शायद निम्न वर्ग साफ कर सके, हालांकि वह भी यह नहीं जानता कि कैसे उसे करना है, इसीलिए वह करता है। सुपरिटेंडेंट कहता है, सीधा झाड़न मारो, सो सीधा मार देते हैं। आप कोई और तरीका बताओ तो वैसे कर देते हैं। एकांकी का आरंभ और अंत दोनों ही धूल झाड़ने से हुआ है, जो सांकेतिक है। पिछले एकांकियों से यह एकांकी अपने शिल्प में परिपक्व है, जहाँ स्थूल क्रियाओं का पृथक लगने वाली फालतू हरकतों का सहारा नहीं लिया गया है, न लक्ष्य को स्पष्ट संवादों में कहा गया है, न पुनरावृत्ति ही है। पूरा व्यंग और संकेत एकांकी के भीतर से फूटता है। यही राकेश की विकसित नाट्य कला का उदाहरण है। निसंदेह ये एकांकी राकेश के निरंतर विकासमान प्रतिभा को प्रकाश में लाते हैं, और राकेश में ही हिंदी नाटक की पहले की स्थिति का और अनायास कई कदम आगे का उसका विकास लक्षित हो जाता है।